ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादी दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
परमात्मा ने कहा कि ये पूरा विश्व रोगी है। कौन से रोग से ग्रस्त है? ये जन्म और मृत्यु के रोग से। और जब तक जन्म और मृत्यु का ये रोग नाश नहीं होगा, तब तक आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकती, तब तक परम शांति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्मा, परमात्मा के पाने के लिए हमें एक विशेष विवेक की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अंदर हमें सबसे पहले कौन सी वस्तु को आधार मानना पड़ेगा? हमने परमात्मा के पाने के लिए उस साधना को आधार मानना पड़ेगा जिस साधना को करके जिन महापुरुषों को हम अमर मानते हैं, कि जो संत, जो महापुरुष मुक्त हुए हैं, उन्होंने कौन सी साधनाएं की, कौन सी भक्ति की और उन्होंने कौन परमात्मा बताया, फिर तो सब संशय खत्म हो जाती है, बात ही समाप्त हो जाती है। हमारे अंदर जो शंकाएं थी वो नष्ट हो जाएंगी। उसके साथ साथ फिर उनका कुछ संकेत, कुछ विवरण, जैसा कि हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है तो भी हम उसको समर्थन मानेंगे। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आपको बताया था, पांच वेद हैं, ये प्रमाणित ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो वेल नोन है। और पांचवा जो सूक्ष्म वेद है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला है अपने मुख कमल से। उसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में प्रमाणित किया है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक में वर्णन किया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल हवन यज्ञ करता है, कोई योग अभ्यास आसन ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि पाप नाश होए बिना भगवान मिले नहीं, निर्मल होकर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो भावार्थ ये है कि वो सभी इसलिए अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं कि उनको वो उचित मान रहे हैं, पाप नाशक मानते हैं। फिर गीता ज्ञानदाता कहता चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की विस्तार के साथ यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे, यहां गीता अनुवादकर्ताओं ने बेईमानी कर रखी है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी, वेद वाला ज्ञान तो वो गीता ज्ञान दाता बोल ही रहा है और उससे वो हटकर बता रहा है कि सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये ब्रह्मण शब्द है जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण मुखे शब्द है, वहां भी ब्रह्मण शब्द है। तो वहां इनकी नीत साफ थी अनुवादकर्ताओं की, इन्होंने वहां पर ब्रह्मण का अर्थ कर दिया सच्चिदानंद गणब्रह्म जो इसका असली अर्थ है। और यहां चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये डंडी मार गए क्योंकि इनको ज्ञान था नहीं, बेईमानी कर गए। यहां लिख दिया वेद की वाणी, यहां भी लिखना था सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी में। आपको दिखाते हैं, थोड़ा सदग्रंथों को रूबरू कराएंगे तभी तो विश्वास होगा। श्रीमद् भगवद गीता पद छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय नंबर 4 है श्रीमद् भगवद गीता का। ये 25 में क्या कहा है, दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का यानी धार्मिक अनुष्ठान का भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं, उपास्ते मन पूजा करते हैं। और अन्य ब्रह्मग्नु यानी ब्रह्म परब्रह्मणी इस काल की साधना तक सीमित है, आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। और 26वां अन्य स्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, यानी कुछ अपने इन कान आदि रोक राख कर ये क्रियाएं करते रहते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि शब्द सपर स्वरूप रसगंध इन समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी अपने संयम साधना में लगे रहते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को श्वासों की प्राण माने श्वासों की ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, हवन माने साधना करते हैं। और कई पुरुष दर्व संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी दर्व संबंधी माने धन से होने वाला, जैसे कोई भंडारा कर दिया कि तक कंबल बांट दिए और कहीं कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई मंदिर बनवा दिया, इस तरह कहते हैं कुछ एक इस प्रकार की साधना करके संतुष्ट है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। दर्व संबंधी यज्ञ दर्व माने धन से होने वाली करने वाले कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कई तपस्या ही करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तपस्याओं का। दूसरे योग करते हैं, योग अभ्यास यानी पेट घुमा दिया कि तरह ऊपर न पर नीचे न सर कर ली, इस तरह की क्रियाओं से ही वो अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। और कुछ एक अहिंसावादी तीक्ष्ण वर्तों से युक्त यत्नशील पुरुष, कुछ एक ऐसे जो ऐसे मुंह पर पट्टी बांध गए और नंगे पैरों चल रहे, इसको अहिंसावादी तीक्ष्ण वर्त बोलते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं। और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, जैसे गीता जी का पाठ कर लिया या कोई वेदों के मंत्र घोट लिए, इस तरह के स्वाध्याय बोलते हैं। 29-30 में क्या कहा कि दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी अपने अंदर की 5 प्राणों से ही खसते रहते हैं प्राण वायु को अपान वायु में। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, यानी सीमित आहार एक बार थोड़ा सा खा लिया उसका अभ्यास करते रहे, कुछ प्राणायाम करते रहते हैं प्राणों और अपान की गति को रोककर प्राणों को श्वास बढ़ाने घटाने के चक्कर में लगे रहते हैं, प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं। यदि इनको पता लग जाए कि ये साधना पाप नाशक नहीं है, तुरंत त्याग देंगे। ये यदि यही सही होते, फाइनल होते, तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि और विस्तार के साथ वहां लिखी हुई है। अब और विस्तार क्या रह गया, जितने डड़े डोने थे सारे बता रखे, अब देखना। अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है। इसमें एक शब्द है एवं बहुविधा यज्ञ वित्त ब्रह्मणे मुखे, ये ब्रह्मणे शब्द है इसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा वी मोक्ष से। अब क्या बताते हैं, इस ब्रह्मणे मुखे को हमने देखना है, इन्होंने अनुवाद गलत किया है। एवं माने इस प्रकार, बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान इन्होंने वेद की वाणी में कर दिया, ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिखना था सचिदानंद गण ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए, उन सबको तू कर्म जान यानी कर्मों से शारीरिक क्रियाओं से संपन्न होने वाले जान, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम से तीत लागवे, ये क्रिया है उसमें विधि जान उनको जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब ये देखना हमने, ये गलत कर दिया, ने बेईमानी कर रखी आप। यहां लिखना था सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी में, अब आपको दिखाते हैं इसी श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। यहां देखना 23 में, इसमें है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा जय विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत् सत् इति माने यह है, ऐसे यह है। त्रिविध माने तीन प्रकार का, ब्रह्मणे मुख्य ब्रह्मणे सचिदानंद गण ब्रह्म का, ब्रह्मणे माने सचिदानंद गण ब्रह्म, ये यहां बिल्कुल सही इन्होंने अनुवाद किया है, का नाम कहा है अपने आत्मा। इस गीताजी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता से एक सचिदानंद गण ब्रह्म कोई और है, सुप्रीम पावर समृद्ध शक्ति, और उसका मंत्र है ओम तत् सत, ये तीन मंत्र का है। तो एक तो हमारी पवित्र गीता से हमें ये मिलेगा कि कौन सी साधना करने की है, वो कौन से मंत्र हैं जो जाप करके मोक्ष प्राप्ति होती है, और दूसरे फिर हम प्रमाण लेंगे उन महापुरुषों से जिनको हम मुक्त मानते हैं और जिनका ये अन्य संत पंथ प्रमाण देते हैं कि वो पार हो गए, वो महापुरुषों की वाणी भी लेते हैं, तो उन्होंने भी कौन से मंत्र जाप किए, फिर ये सब रास्ता साफ हो जाएगा, शंका समाप्त हो जाएगी। शंका समाप्त हो ही भगवान मिला, फिर तो क्रिया करनी शेष रह जाएगी, और वो क्रिया इतनी आसान है, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का कभी कितना ही भजन कर लो, काम करते करते और अंतिम सांस तक साधना करनी है, भगवान साथ लेकर जाएगा आपको सतलोक में। अब हम फिर आगे अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 पे। अब इसमें है इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे, यहां लिखा गया सचिदानंद गण ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं, उन सब को तू कर्म जान यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इसका तात्पर्य यह है कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि सचिदानंद गर्भब्रह्म की वाणी में जो उस सचिदानंद गण ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने पूर्ण परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है, वो वाणी मुखे मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में मुख से बोले गए उस ज्ञान में वो विस्तार के साथ कहा गया, और उसको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से सभी प्रकार से तू सब कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अपुनात्मो, ये तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी है, ये सूक्ष्म वेद है, पांचवा वेद है, और जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता अनभिज्ञ है, कहते उसकी जानकारी तो कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव सच्चिदानंद गणब्रह्म का जो दास होगा, उससे परिचित जो संत होगा वो बतावेगा। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी में है, जिसको परमात्मा ने, सच्चिदानंद गणब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, सत्पुरुष ने स्वयं आकर के बोला है, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये देखिएगा चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। ये 34वां श्लोक, उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद गणब्रह्म ने स्वयं आकर के बोला है, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, कितना कंसेप्ट क्लियर कर दिया। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कह रहा है कि वो सच्चिदानंद गणब्रह्म आकर के अपने मुख कमल से ज्ञान देता है, और वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता उस ज्ञान के विषय में नहीं जानता, नहीं तो ये लिखने और कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये कह देता कि अगले अध्याय में लिखता हूं, उसमें पढ़ ले, इतनी सी बात थी। ये नहीं जानता, इसने उस ज्ञान को, पांचवें वेद को नष्ट कर दिया था, और उसको प्रदान करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। अपने आत्माओं, यहां एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। गीता ज्ञान दाता अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा, और ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता ये पंचदशो अध्याय यानी पंद्रहवां अध्याय है, ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व मूलम, इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में दो बार अधः है, अधः अधः, इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पर किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधे माने नीचे, अधे माने नीचे। तो हम यहां इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जैन के समझ में ना आई। अब हम 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़, और अध शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके जो पत्ते आदि जो है, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद, उन सभी भागों को जो जानता है, तम उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है, ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सचिदानंद गर्भ ब्रह्म समझो, ये जड़े तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष, ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो या सचिदानंद गण ब्रह्म कहो, ये जड़े हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी, अपने सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, और सर पुरुष वाकी डार, जिसको निरंजन भी कहा है, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात्र रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सर्वपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं ज्योति निरंजन को, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये देखिएगा, ये प्रोक्ष है पूर्ण परमात्मा, तो गुप्त है जमीन में, जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सर पुरुष वाह की डार, ये मोटी डार, सर पुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है और पात्र संसार। तो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है, गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखिए, उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा, वो जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना, अब एक पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अध्य शाखम नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया, और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो मूल सहित तत्व से जानता है, से वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो इसमें लिखा है कि संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं, विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था, नीचे और ऊपर फैली हुई सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था, श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिवजी की जो पहुंच है, जो प्रभुता है उनकी, वो केवल इन तीन लोकों पर है, पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक, इन तीन लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहां तक इनकी पहुंच है, ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यू बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की, देखना। अब हम ये दूसरा पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा यह है अध से ऊर्धम प्रसन्नता, तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहां तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई शाखाएं नहीं है, यह है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो, इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर सर्वतरनी, नीचे और ऊपर फैली हुई है, और मनुष्य लोक में यहाँ पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है, मूलानी माने जड़ है, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई है। अब हम यहाँ एक शब्द आया है तीनों गुण रूप शाखा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, यही तीनों गुण है, यही तीन देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडे पुराण, ये वही मार्कंडे पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहां से छपी है, यहां से देखना, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बता रहे हैं, इसके सामने आ जाते हैं। यहां रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु है, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। यही तीन देवता हैं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और यही तीन देवता कहो चाहे इनको तीन गुण कहो, वह कंसेप्ट क्लियर। वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़े हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर, और प्रमाण देते हैं एक देखिएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक, ये कहां से प्रकाशित है, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। अब यहां देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। यह है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, तीसरा स्कंद प्रारंभ हुआ, तीसरे स्कंद में 11वां पृष्ठ पर हम आ गए हैं, 5वां अध्याय है ये, पांचवें अध्याय का आठवां श्लोक है, सातवां समाप्त हुआ, आठवां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण क्यों युक्त किए हैं? हिंदी हमने पढ़ ली, संस्कृत पढ़ेंगे। ये सातवां श्लोक समाप्त हुआ, आठवां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, उसको रजोगुण बना दिया। सुवित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा गया है, और छंदासी यस्य प्रणानी उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं, यह तम वेद जो उसको जानता है स वेदवित, ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अध्याय माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं, और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तत्व जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो, और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं, ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं, ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई सभी लोगों में नहीं। अब तीसरे में कहा है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में डिस्कशन में गीता जी के ज्ञान की चर्चा में इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है तथा न इसकी अच्छी प्रकार सचिति है, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है इतना ही काफी है, अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है अमर स्थान परमात्मा का। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो जहां से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है बनता है पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं सतलोक अलखलोक अगम और अकैलोक, वो तो सुविरुद्ध है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है, वहां से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी वहां से ही सबकी रचना हुई है, तो वो तो अविनाशी है। सुविरुद्ध मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है अविनाशी है। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के ये देखिएगा, हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं, सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी है, उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़ असंख्य शस्त्रेण का अर्थ है या तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका, क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर अर्थात अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब चौथे पर आ गए। यहां इसका अनुवाद है चौथे का, अध्याय नंबर 15 का। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की परिवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के परम अक्षर ब्रह्म के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में ये स्पष्ट हो गया, तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नाश हो जाता है। अपना आत्मा प्रसंग चल रहा है, तीन परमात्मा, तीन पुरुष, तीन प्रभु मुख्य रूप से अध्यात्म ज्ञान में रहते हैं, एक सर्वपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष जिसको सचिदानंद घन ब्रह्म कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में तीन पुरुषों की जानकारी भिन्न भिन्न है। इससे पहले थोड़ा सा और संशय निवारण करेंगे और थोड़ा सा प्रमाण जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, संसार की और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। 7वें अध्याय 29वें श्लोक में बताया गीता ज्ञानदाता ने, और 30 श्लोक हैं 7वें अध्याय में। फिर 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और वो अध्यात्म ज्ञान क्या है, वो कर्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है, मुझे उसकी जानकारी दीजिए कि जिसको जानने के बाद साधक फिर यहां की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य समर्थ शक्ति है, वो सुप्रीम गॉड है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रमाण देखिएगा, ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का, और यहां 29वां श्लोक है, यहां संस्कृत संस्कृत है इसकी। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के अर्थ, मोक्ष के लिए, जरा और मरण से छुटकारे के लिए, माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके के तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बताएंगे, उसका आश्रय करके यतन्ति ये जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अनुवाद देखिए, गीता ज्ञान दाता कहता जो मेरे शरण हो गए, जरा माने वर्धवस्था मरण से यानी मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, यतन करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म, तत् उस ब्रह्म ब्रह्म को, तत् ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अध्याय नंबर सात के तीस मत इतना कहा है कि जो मुझे जानते हैं इस सब रूप में तो वो मुझे ही जानते हैं, आगे नहीं जानते वो। अब इसके साथ ही ये है अथ अष्टमो अध्याय इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्परम, तो यहां पूछा है आठवें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत्परम और किम अज्ञातम और किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम उपरोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है? तो गीता ज्ञानदाता ने अब इसी गीता अध्याय नंबर आठ के और श्लोक नंबर तीन में कहा है वह परम अक्षर ब्रह्म है। वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और समर्थ है। अब हम समझेंगे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सर्वपुरुष ये ज्योति निरंजन है, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है, और अक्षर पुरुष है ये सात शंख ब्रह्मांड का स्वामी जो संसार रूपी वृक्ष का तना जानो, और मूल जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 यहां श्लोक है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरह च अक्षर है एव च, इस लोक में द्वौ माने दो, पुरुषौ माने परमात्मा, वेल नोन है। कौन? सर्वपुरुष कहो अक्षर पुरुष को, इस पुरुष को हम यहां दो जगह लगा सकते हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो तो नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की मरती नहीं है, तो गधे की भी नहीं मरती। यह अनुवाद देखें, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष, यानी पुरुष माने परमात्मा प्रभु हैं, एक सर्वपुरुष एक अक्षर पुरुष। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा तो सबकी अविनाशी है, गधे कुत्ते की भी है। अब सतराम कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य इन दोनों से, इस सर और अक्षर से, ये दो पुरुषों से अन्य है, उत्तम पुरुष है तो अन्य और परमात्मा इति उदारते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये लोक त्रयम आविश्य विवर्ति जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवे ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है इन दोनों से, सोलहवें श्लोक वालों से अन्य है, और ही है। तीनों लोकों में प्रवेश करके संसार रूपी वृक्ष को यानी जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है, यानी उस परमात्मा से ही सबका धारण पोषण हो रहा है, वो सबका मालिक है, सबका दाता है। अब यहां फिर देखिए, उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये विचलित कर देंगे आपको ये तत्व ज्ञानहीन 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में, अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको यहां अड़ा देंगे कि गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया कि वो उत्तम पुरुष मैं ही हूं। नहीं, यहां तो इसने ये कहा कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक वेद के आधार से यानी दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो तो कोई और है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। बस इतनी सी बात है। ये देखो गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 18, यस्मात् सर अतीतः अहम् अक्षरात् अपि च उत्तम, अतः अस्मि लोके वेदे, लोके वेदे माने लोक वेद में दंत कथाओं के आधार में मैं पुरुषोत्तम प्रथित माने प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वता अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब यहां इसने क्या कहा है? यदि ये और साथ में श्लोक आपको ना सुनाए जाते तो यहां आपकी बुद्धि नहीं सेट होती। ये कहता कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं, क्योंकि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, तो ये कहता है मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे तो नाशवान जड़वर्ग है और चाहे अविनाशी जीवात्माएं हैं, उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं। इसलिए इस दंत कथा के आधार से, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। वास्तव में पुरुषोत्तम तो उसने बता दिया कोई और ही है। और फिर आठवें अध्याय के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में, आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्मा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि अर्जुन तू सब भाव में सब समय में मेरा स्मरण कर, मुझ में भाव वाला बन और युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। अब जहां आशा ता वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब आठवें जाय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञान दाता इन 3 श्लोकों में अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। और अपने विषय में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है और नाशवान की भक्ति करने से स्थाई मोक्ष हो नहीं सकता, जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। अब आपको फिर दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, यही वो गीता जी है। अब हम आपको दिखाते हैं पहले गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13। इसमें कहा गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति प्रमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स, मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है अर्थात अंतिम समय तक उसी का सिमरण करता हुआ दे त्यागता है, सयाति परमाम गतिम, वह इस ओम जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। यहां से शुरू होता है इसका अनुवाद, 12 और 13 का इकट्ठा कर रखा है इन्होंने। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को, इन्हें तनुवाद गलत करने का ठेका ले रखा था, इस एक अक्षर नहीं एक अक्षर मुझ ब्रह्म का एक अक्षर सुमन करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब ये यहां क्या कहना चाह रहा गीता ज्ञानदाता कि मेरा तो एक ओम अक्षर है और जो इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा, इस ओम से मिलने वाली परम गति वो क्या हुआ, ब्रह्म लोक है। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ति में है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया, देखिएगा ये 16वां श्लोक है। ये अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। अब इस सटार को इन्होंने यहां देकर कंसेप्ट क्लियर किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, इसलिए पुनरावृत्ति कहा है। यानी ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर लौटकर आते हैं। अब यहां थोड़ा सा और दिखाएंगे, पुण्यात्माओं हम एक रोटी पेट के लिए निर्वाह के लिए 15-16 वर्ष पढ़ते हैं और क्या मिलता है, 2 टूक। और जब भगवान प्रसन्न हो गया तो सब कुछ देगा आपको। इस आत्म कल्याण के चैप्टर को हमने क्लोज करके रखा है और कोई स्टार्ट करता है तो ये अज्ञानी बैठे जगह जगह ठग, इनको कख पता नहीं, मूर्ख बना रखा पूरे विश्व को। तो दास चाहता है कि आप स्वयं समझें तब हमारी जड़ता हटेगी और तब हम दूर हटेंगे नकलियों से। इन्होंने बठा बठा दिया हमारे दादे और परदादों का, सारे भूत बनवा दिए, कोई गधे कुत्ते की योनी में गए, काल के मुंह में डाल दिए। तो इस तत्व ज्ञान को आप स्वयं समझो और फिर देखना कोई बात है। या सदग्रंथ हमारे पास है, हम एजुकेटेड हैं, उनके कुछ से सींग लाग रहे थे जो ये नपट डा करते गलत बताया करते, हम उनको विद्वान मानने बैठे थे। तो इसके समझने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिएगा। अब जैसे देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी उस हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है और उसको बता रही है कि तू सब पूजाएं छोड़ दे, मेरी पूजा भी मत करना, यदि तुझे आत्म कल्याण चाहिए। अब जितना इसको ज्ञान था आत्म कल्याण कितना मानती थी, तो बताया कि उस ब्रह्म का एक मंत्र है और उसका जाप कर तू तेरा कल्याण होगा और जो वो ब्रह्म लोक में रहता है वहां चला जाएगा। देखिएगा देखिएगा देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। हम ज्यादा ना पढ़ेंगे, अपने काम का पढ़ेंगे। 562 पृष्ठ पर ले चलते आप, 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। यहां देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन देवी जी कहने लगी। पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य, उस वेद ने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। यहां देखना, उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी सबकी पूजा इवन अपनी पूजा को भी छोड़ने को कह रही है देवी जी। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है, संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम नाम जाप करो उसका, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम के नाम से ब्रह्म प्राप्ति होगी, तुम्हारा कल्याण हो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वह ब्रह्म लोक में रहता है और ओम के नाम से तुम उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, पा जाओगे। वो कह रहे था ब्रह्म लोक में। अब क्या सिद्ध हुआ कि ओम नाम के जाप करने से कौन सी परम गति है? ब्रह्म लोक प्राप्ति है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, पुनर्लौट कराएंगे। फिर हम आते हैं दोबारा श्रीमद् भगवद गीता पर, देखिएगा। अब ये स्पष्ट हो गया, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में इसने स्पष्ट कर दिया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का यह एक एकाक्षर ब्रह्म, ओनली वन मंत्र ओम है। माम ब्रह्म, माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम केवल यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्याहरण माने उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। यहां से शुरुआत किया अनुवाद का। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मुझ निर्गुण ब्रह्म का सेवन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया श्री देवी जी ने कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को उद्देश्य रखो और कहां पहुंच जाओगे? ब्रह्म को पाओगे। कहां रहता है? ब्रह्म लोक में। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत पुनरावर्ती में सभी लोग वहां गए, प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 और 7 में तो गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कह रहा है आठवें अध्याय के छठे श्लोक में इतना कहा है, जहां आशा ता बासा होई मन कर्म वचन सुमरियो सोई, जिसके अंदर आशा लगाकर तुम जाप करते रहोगे आजीवन, अंत में उसी को प्राप्त होगे।